الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے صحبت صالحین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھنا. صحبت انسان کو نیک بھی بناتی ہے اور صحبت انسان کو بد بھی بناتی ہے. نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ ایک آدمی کوئلے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس جا کر آپ بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، صرف بیٹھ جائیں اس کی صحبت میں، کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے. آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں بٹایا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی کاروبار نہیں کیا، صرف اس کے پاس بیٹھے، بیٹھنے سے ہی کپڑے کالے ہو گئے. وہ جو راگ اڑے گی کپڑے کالے ہو جائیں. اور ایک آدمی ہے عطار، عطر فروش، اس کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، پھر بھی خوشبو ضرور پیدا ہو. یہ ہے نیک اور بد کی مثال. اب اگر کسی کو روکو کہ بھئی فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ بیٹھو، جیسے آج کل کے نوجوان غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں، غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو روکیں تو کہتے ہیں ہم کوئی کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بیٹھ رہے ہیں. جو حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، ہم تو خالی ان کے پاس بیٹھے ہیں. بیٹھنا ہی خطرناک ہے. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے صحبت سے پہچانا جاتا ہے کس سوسائٹی کا آدمی کس صحبت میں بیٹھتا ہے. اگر نیک صحبت میں ہے تو نیک ہے، اور بروں میں ہے، نیک بروں میں بیٹھ جائے برا ہو جائے. تو اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ غلط صحبت میں بیٹھ گئے، آپ نے دل میں یہ سوچ لیا میں کوئی کام نہیں کر رہا، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا، لیکن آپ کا ذہن ضرور خراب ہو جائے گا. غلط باتیں جب سنیں گے، غلط قسم کی فواہش، لغویات، یہ ساری چیزیں سنیں گے، ذہن خراب ہو جائے گا. اور نیک صحبت میں کوئی کام نہیں کیا، صرف آپ آ کر بیٹھ گئے، ذہن ضرور پاکیزہ ہو جائے گا. یہ ہے نیک اور بد کی مثال. اس لیے حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صحبت سے بچا جائے جہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، جس محفل میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، جس محفل میں قرآن و حدیث کے خلاف یا دیگر دنیاوی غلط قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ وہاں سے ہٹ جائے. تو اس میں آپ کا ذہن پاکیزہ رہے گا، اور اعمال و افعال و کردار پاکیزہ ہو جائے گا. تو آج کی نشست اسی عنوان پر ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ نشست رکھی کیونکہ اہل طریقت اور اہل محبت جو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو غلط لوگوں سے بچائیں. غلط لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں بیٹھنے سے بچائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ جا کر بیٹھیں، اب اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، غلط قسم کے سوالات، غلط قسم کے شکوک و شبہات وہ آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور ذہن کو خراب کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے صحیح العقیدہ اہل سنت، لیکن شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کیونکہ پیدائشی اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہمارے ماں باپ، دادا، پردادا سب، لیکن اگر غلط صحبت میں بیٹھے، غلط بات سنی، غلط چیزیں، شکوک و شبہات پیدا ہو، اور سوچا کہ ہاں یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, حدیث تو یہ کہہ رہی ہے, فلاں کتاب یہ کہہ رہی ہے, فلاں امام کا قول یہ ہے. تو ان چیزوں کو غلط انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے, خراب کرنا بہت آسان ہے. سفید کپڑے آپ پہنے ہیں, کیچڑ اٹھا کے پھینک دی, خراب ہو گئی. سیاہی ڈال دی, خراب ہو گئی. ایک سیکنڈ لگا, اور صاف کرنے میں محنت ہوگی, پانی ڈالو, پھر صابن لگاؤ, پھر اس کو رگڑو, تب جا کے صاف ہے نا محنت. تو خراب عقیدہ خراب کرنے میں ٹائم نہیں لگتا, صاف کرنے میں ٹائم لگتا. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, اور اگر ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہوں تو اس کو فوراً پوچھ کر اپنے ذہن کو صاف کر سکیں, تاکہ صحیح عقیدہ اہل سنت رہیں اور اسی مسلک پر قائم رہیں. صحبت کئی قسم کی ہے. اولیاء کی صحبت, انبیاء کی صحبت, صالحین کی صحبت, ان تمام صحبتوں میں فرق ہے. اور جیسی صحبت ہے ویسا مقام. ایک ہے عام انسانوں کی صحبت, نیک بندوں کی صحبت, اس سے بھی آدمی پاک رہتا ہے, صاف رہتا ہے, اس کا ذہن, اس کی نیت, اس کا قلب پاک اور صاف رہتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت, اہل ایمان کی صحبت, خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت. اب جب آدمی وہ صحبت اختیار کرتا ہے تو اس نیک صحبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے. اصحاب کہف جانتے ہیں نا, وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچا کر شہر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے. سورہ کہف قرآن مجید میں موجود ہے, تفصیل کے واقعہ موجود ہے. جب یہ لوگ اس بادشاہ کے ظلم سے, ستم سے بچ کر نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی نکلا. اب وہ اہل ایمان کی جماعت جو اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے جب روانہ ہوئے تو وہ کتا ایک جانور بے عقل جس کو ہم ذلیل حقیر شے سمجھتے ہیں, وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جہاں وہ چلے وہ بھی چلتا رہا, جہاں وہ رک گئے وہ کتا بھی رک گیا. اور اس کی وفاداری تو مشہور ہے, اسی وفاداری کے تحت وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. بادشاہ نے اپنے کارندوں کو دوڑایا, جہاں بھی ملے زندہ یا مردہ ان کو پکڑ کے لیا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ ان تک نہ پہنچ سکے. اور یہ اہل ایمان اپنے ایمان کو بچا کر سفر کرتے کرتے ایک غار میں چلے گئے, اور جب غار میں گئے وہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ غار میں چلا گیا. وہ اندر داخل ہو گئے اور یہ اس کے دہانے پر, یعنی اندر ہی تھا لیکن اس کے بالکل کونے پہ دہانے پر پیر پھیلا کر لیٹ گیا. اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی, وہ سو گئے اور یہ بھی سو گئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا ذکر کر دیا. غور کرو, قلبہم باسط ذرائع بالوسیط. قرآن کہتا ہے وہ کتا غار کے دہانے پر اپنے پیر پھیلائے ہوئے سو رہا, ایک ذلیل حقیر شے جس کو ہم اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہو گئے, ذلیل حقیر شے. اس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی, قرآن میں ذکر آ گیا. تو جب ایک جانور اللہ والوں کی صحبت میں رہے, قرآن میں ذکر آ جائے, تو کوئی اہل ایمان اگر صحبت میں رہے تو اس کا کیا مقام, اس کو کیا درجہ ملے. یہ ہے صحبت کا اثر, کہ وہ بالکل ایک ناپاک جانور, ایک ذلیل حقیر شے, یعنی ہم اگر کسی کو ذلیل حقیر کرنا چاہیں تو اس کو کتا کہہ دیتے. اور یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے نا کہ جانوروں میں بھی عزت اور ذلت. اگر کسی کو کہہ دو یہ میرا شیر ہے, کتنا خوش ہوگا, خوش ہوگا نا کہ دیکھو مجھے شیر کہا. اور کہہ دو یہ میرا کتا ہے, تب کہہ کے دیکھ لینا, پتہ چل جائے گا کتنی مار لگائے گا. تو یہ جانوروں میں بھی اس طرح ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے دست قدرت میں رکھی, تو وہ ذلیل حقیر ہے جسے ہم بالکل حقیر سمجھے, اس نے اللہ والوں کا ساتھ نبھایا, ان کے پیچھے چلتا رہا. اثر یہ ہوا کہ قرآن میں ذکر آ گیا اور ان کے ساتھ ہی اٹھے, سو رہے کئی سو برس تک سوتے رہے, پھر اٹھے. قال کم لبست, کتنی دیر سوئے؟ لبست یوما او بعد یوم, ایک دن یا دو دن. قرآن کہتے نہیں, بل لبست مئت عام, سو سال سوئے. نیند غالب کر دی, ان کو بچا لیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جانور نے جب اللہ والوں کا ساتھ پکڑ لیا, ان کی صحبت اختیار کی, اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, تو اگر کوئی انسان جو کہ صاحب ایمان وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے, تو اس کو کتنا نتیجہ اور کتنا ثمرہ اس کا ملے. یہ ہے صحبت کا اثر. تو وہ تو صحبت تھی اہل ایمان کی, ٹھیک ہے نا, اہل ایمان کی. ایک صحبت ہے اولیاء کی, اور وہ بھی اولیاء تھے. ایک صحبت ہے انبیاء کی. ہر صحبت کا الگ الگ درجہ ہے. کوئی ولی کی صحبت میں رہتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے, ایک نگاہ کرم ہو گئی ولی بن گئی, دین کا علم حاصل کرتا رہے. لیکن کسی نے کیا خوب کہا, نہ کالج سے نہ اسکول کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کالجوں میں جانے سے دین نہیں پیدا ہوگا, دیگر جگہ جانے سے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, ایک نظر ہو گئی, دین پیدا ہوگا, ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دیتا. تو ایک ہے اولیاء اللہ کی صحبت, اس کا مقام الگ, اور یہ اللہ کی صحبت کا مقام ہی الگ. جو جتنا حاضر باش, جس کی حاضری جتنی پختہ, اتنا فیض یافتہ, اتنی نگاہ کر. اب دیکھیں ہم اوپر سے چلے, پہلے تو خیر میں نے اہل ایمان کی بیان کر دی, لیکن اب ہم اوپر سے چلتے ہیں. انبیاء کی صحبت, بلکہ سید الانبیاء کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ صحابی کے معنی ساتھی, صحابی کے معنی دوست, صحابی کے معنی ساتھ رہنے والا. وہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ہم وقت حضور کی خدمت, صبح و شام حضور کی خدمت, اور کتنے خوش نصیب تھے, جب چاہتے تھے جب جاتے تھے, جب چاہتے تھے جب حضور کا دیدار کرتے تھے, جتنی دیر چاہتے تھے اتنی دیر کرتے تھے. کیا ان کا مقام اور مرتبہ؟ اور صحابی رسول کا مقام امت کے اولیاء, اقطاب, اغواز, ان سب سے بلند. غریب نواز سے بھی بلند, غوث اعظم سے بھی بلند, ایک صحابی کا مرتبہ سب سے بلند. اس امت کا ولی عبادت کر کے, ریاضت کر کے, مجاہدہ کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو صحابی رسول کو حاصل. اور کیوں حاصل ہوا؟ صرف ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا, صحابی بنا. صحابی عمل سے نہیں بنتا, صحابی صحبت رسول سے بنتا, حضور کی زیارت کرنے سے بنتا. اب ان کا مقام بلند ہو گیا کیوں؟ صحبت سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہم وقت موجود, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں, انہوں نے روایت کی. کیوں؟ ان کا کام یہ حضور کی صحبت میں رہنا, حضور کے چہرے کو دیکھنا, احادیث کو لکھنا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قوی حافظہ بھی انہیں عطا فرمایا, ہزاروں حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسے کہ آج سنی. صرف اس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے, دن رات حضور کی بارگاہ میں, صبح و شام حضور کی بارگاہ میں, ہر لمحے ہر وقت حضور کی بارگاہ میں. تو صحبت نے کیا کیا؟ امت کے اولیاء اقطاب اغواث سے بلند کر دیا. کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے بلند, सारे वलियों से बुलंद, सारे नबियों से बुलंद, तो इसलिए उनकी सोहबत में रहने वाला भी सबसे बुलंद, उनसे फैज याफ्ता भी सबसे बुलंद। तो ये तो सैयदुल अंबिया की सोहबत। औलिया की सोहबत क्या है? औलिया अंबिया के नाइब हैं। हर चीज का एक खलीफा होता है ना, एक नाइब होता है। औलिया अंबिया के नाइब है। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। सरकारी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबियीन, नबूवत के सिलसिले पर मोहर लगा था, बस। अब विलायत का सिलसिला जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह के नेक और बरगुजिंदा बंदे आते रहेंगे और गुमराह इंसानों को हिदायत का रास्ता बताते रहेंगे। सिलसिला चल रहा। अब औलिया की सोहबत। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। अगर तू 100 साल तक किसी दुनियादार की सोहबत में रहा, 100 साल, 1-2 साल नहीं, 100 साल किसी दुनियादार की सोहबत में रहा और 1 लम्हे अल्लाह के वली की सोहबत में रहा, वो 1 लम्हा उस 100 साल से बेहतर है। उस 1 लम्हे में तुझे जो मिलेगा वो 100 साल में नहीं मिल सकता। अल्लाह का वली 1 नजर में, 1 लम्हे में अता कर दे, 100 साल में नहीं मिल सकता। यक जमाना सोहबत बाउलिया, बेहतर अज सद साल अतात बेबे। क्योंकि अल्लाह का वली जो जलवा दिखाता है, जो पर्दे उठाता है, जब इंसान की आंख उसे देख ले, फिर कोई चीज उसके सामने नहीं देखती। यही मौलाना रूम का वाकया, बैठे हैं मसनबी लिख रहे हैं, उस जमाने में परेश नहीं है, कंपोजिंग नहीं हो रही कि कंप्यूटर में बैठ के लिखा दे दिए जाओ, चपवा लो कलम से, और कलम भी वो कि डुबोते थे, लिखते थे, स्याही खत्म हो गई फिर डुबोया फिर लिखो, इतनी मेहनत से। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, वली ये कामिल पहुंच गए। मौलाना क्या लिख रहे हो? का मसनबी लिख रहा, दिखाओ जरा। इन्होंने दिखाई, इन्होंने उठा के दरिया में डाल। मौलाना को गुस्सा आ गया, ये क्या किया आपने, इतनी मेरी मेहनत जाया कर दी। जाहिर है कलम से लिखी हुई इबारत अगर पानी में डाल दी जाए तो क्या असर होगा? धुल जाएगी। अगर प्रिंटेड भी हो तो खराब हो जाएगी, वो कैफियत नहीं रहेगी। और कह जाए कि कलम से लिखी हो वो तो सारी बह जाएगी। मौलाना को गुस्सा आ गया, शाह शाह शम्स तबरेज पर ये आपने क्या किया, मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। मौलाना मुस्कुरा, अच्छा बस यही इल्म है? हाथ डाला पानी में, किताब निकाली, उसमें खाक झाड़ कर दे दी। पानी में कोई चीज गिर जाए तो उससे निकालो तो पानी टपकता है ना। और शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने जब वो मौलाना की किताबें निकाली मौलाना रूम की दरिया में से, तो खाक झाड़कर उनके हवाले कर दी। अच्छा हुआ क्या था, जब ये वहां पहुंचे और वो लिख रहे थे कि मौलाना क्या लिख रहे हो, कहा ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। मौलाना को अपने इल्म पर बड़ा नाज था, मैं तो आलिम हूं, मैं तो फकीह हूं, मैं तो मुहद्दिस हूं, मैं तो बहुत बड़ा आलिम, और हकीकत में वो बहुत बड़े आलिम थे, हजारों उनके शागिर्द यहां से वहां तक तलामजा की लंबी कतार लगी हुई, हर जगह मशहूर मौलाना रूम। उन्होंने देखा था ये फकीर, ये क्या समझे कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसे क्या पता क्या लिख रही हूं, का ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। इन्होंने कहा अच्छा दिखाना जरा, उनसे लिए और दरिया में डाल दिया। अब इनको गुस्सा आया कि ये क्या किया, उन्होंने निकाल के फिर दे दी। और जब निकाल के खाक झाड़ कर दी तो उन्होंने कहा ये क्या, अब इन्होंने कहा ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। पहले उन्होंने कहा था ना तुम नहीं जानते, इन्होंने कहा ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते, ये कहा और चल दिए, एक झलक दिखा दी और चले गए। मौलाना ने अपनी पगड़ी उतार कर अपने गले में डाल ली, नंगे पैर नंगे सर एक मर्द कलंदर के पीछे जा रहे हैं, और फरमाया मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी मौलवी नहीं बन सकता जब तक कि शम्स तबरेज का गुलाम ना हो जाए। लोगों ने कहा कि मौलाना को एक फकीर ने गुमराह कर दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, एक तरफ रख दिया दरस तदरीस, शम्स तबरेज के पीछे जा रहे, उनके हाथ पे बैत हो गए। शागिर्द जो थे वो गुस्से में आ गए, देखो एक फकीर ने हमारे उस्ताद को गुमराह कर दिया, अरे ये तो हदीस पढ़ा रहे थे, ये तो फिका पढ़ा रहे थे, ये तो फला चीज पढ़ा रहे थे, हम कितने इनसे इल्मी फैज हासिल करते थे, एक फकीर ने पता नहीं क्या किया, सब छोड़ के उनके पीछे जा रहे हैं। शम्स तबरेज के कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, हम इस फकीर को कत्ल कर देंगे, हमारे उस्ताद को देखो गुमराह कर दिया। मौलाना ने सब दरस तदरीस छोड़ा और एक मर्द कलंदर के पीछे जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि गुमराह हो गए, लोगों को क्या पता कि पहले काल था अब हाल है। पहले काल था, सिर्फ जबानी बातें थी। मौलाना रूम को शम्स तबरेज ने हाल दिखा दिया। एक होता है ना काल, एक होता है हाल। हम साहिब काल हैं और जो वहां लेटे हुए हैं वो साहिब हाल है। हम बातें करते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया, वो साहिब हाल है। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं, काल रा बगुजार मर्दे हाल शौ, पेशे मर्दे हाल रा पामाल शौ। कहते काल रा बगुजार, बातों को छोड़ मर्दे हाल बन, बातों को छोड़ दे मर्दे हाल बन, और तू मर्दे हाल नहीं बन सकता जब तक कि किसी मर्दे हाल के पास जाकर अपने आप को उसकी जूतियों की खाक ना बना ले और ये ना समझ ले कि हाल किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं। तू मर्दे हाल नहीं बन सकता। तो वो बड़ी ऊंची कैफियत है। मौलाना उनके पीछे जा रहा, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेज़ी नशुद। तो पहले तो वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने दिखा दिया, एक झलक दिखा दी, सब छोड़ के पीछे चले गए। तो पता ये चला कि अल्लाह का वली अगर कोई एक झलक दिखा दे जो वो देखता है, अगर दुनिया वाले देख ले तो दुनिया को छोड़कर उसके पीछे लग जाए। उसके देखने में हमारे देखने में फर्क है, हम जाहिर को देखते हैं वो बातिन को देखता है, हम जाहिरी महफिलें मुनक्किद करते हैं वो बातिनी महफिलों में शिरकत करते हैं। तो एक है वली की सोहबत, वली की सोहबत है ना, वली की एक निगाह हो जाए, जाहिर और बातिन दोनों पाक और साफ हो। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर बादशाह गुजरा हिंदुस्तान में, और बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़कार, फतावा आलमगीरी उसकी मौजूद, कई सौ उलमा को उसने बुलाकर एक बोर्ड तश्कील देकर और फिकह हनफिया का एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। उन उलमा ने मसाइल पर गौर व फिक्र किया और फिर फतावा आलमगीरी को मुरतब किया, तरतीब दिया बाकायदा। आज भी वो फतावा आलमगीरी मौजूद है, शहंशाह औरंगजेब आलमगीर। एक दिन अपने दरबार में बैठा एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया जानते हो ना, जो अपने रूप को तब्दील कर ले, अपने रूप को तब्दील कर ले, यानी इंसान उसे पहचान नहीं सके ये कौन है। बादशाह के पास आया, बादशाह ने कहा तुम्हारे अंदर क्या कमाल है। हुजूर मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं ऐसा रूप धारता हूं कि कोई पहचान नहीं सकता। बादशाह ने कहा लेकिन मैं पहचानू। अच्छा कोई भी रूप तुम धार लो मैं पहचान। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, चला गया। कई महीने के बाद किसी ने आके कहा कि मुल्के शाम से काफिला आया है, ताजिर उसके अंदर आए हैं आपसे मिलने के लिए। बादशाह ने कहा बुला लो। वो वैसे ही लिबास पहने हुए, उसी तरह की पगड़ी, उसी तरह का लिबास, बिल्कुल सेम, ऊंटों के साथ वहां उन्होंने सवारियां खड़ी की, दरबार में आई। बादशाह ने बड़े गौर से देखा, कहां से आए हो। हम मुल्के शाम से आए हैं, हम ताजिर हैं, हम आपसे मिलने आए। बादशाह देखता रहा गौर से, कहा तुम वही तो बहरूपिया नहीं जो चंद दिन पहले गया था। अब ये तो बेचारा परेशान हो गया, पहले इसने जरा इधर उधर की, उसने कहा नहीं वही है तू, मैं पहचान गया। इसने कहा हाँ वाकई मैं वही हूं, देखा ना मैंने कहा था कि पहचान जाऊंगा। बड़ा परेशान है, अब तुझे इनाम नहीं मिलेगा, ऐसा रूप दहार कि मैं ना पहचान सकूं। और मैंने कह दिया तू जो भी रूप इख्तियार करेगा मैं पहचान, मेरी भी क्वालिटी। उसने कहा अच्छा चैलेंज है, कहां चैलेंज है, और अगर ऐसा रूप तूने दहारा कि मैं ना पहचान सका, जो इनाम कहेगा दूंगा। और अगर बादशाह ये कह दे जो इनाम कहेगा, जाहिर है बादशाह की पूरी सल्तनत है, हीरे जवाहरात मांग ले, दौलत मांग ले, कोई ओहदा मनसब मांग ले। उसने कहा ठीक है, फिर चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद आया, कुछ और बनकर आया, आकर उसने अपनी कुछ हरकतें शुरू की, बादशाह ने देखा तो वही तो नहीं है। इसने कहा यार फिर पहचान, देखा मैंने कहा तो पहचान लिया, भाग दे यहां से, मेरे अंदर भी क्वालिटी में पहचान लूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब ये चैलेंज तो फिर चैलेंज है, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं बताऊंगा नहीं मैं कितने अरसे बाद आऊंगा, लेकिन अब मैं भी ये दावा करके जा रहा हूं ऐसा रूप दहार कराऊंगा कि आप पहचान ही नहीं सकेंगे। बादशाह ने कहा अच्छा ये चैलेंज है, तो ठीक है फिर मेरा भी ऐलान ये है, अगर मैं तुझे नहीं पहचान सका, जो इनाम तू कहेगा मैं वही दूंगा, मुंह मांगा इनाम जो कहेगा। चला गया, अरसे दराज गुजर गया, कोई नहीं आया। काफी अरसे के बाद बादशाह एक मुहिम पर चला गया, वहां से जब वो वापस आ रहा था तो उसको पता चला कि दिल्ली के करीब एक जंगल में एक अल्लाह वाले मौजूद, उन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ, मखलूक खुदा जा रही है। अच्छा किसी ने बताया कि हुजूर वहां पे एक बड़े वली अल्लाह तशरीफ लाए, लोग फैज हासिल कर रहे हैं, जा रहे हैं ज्यारत के लिए। और बादशाह जो था वो बड़ा खुश अकीदा इंसान था, उसको पता चलता कोई अल्लाह का वली है तो जाता था ज्यारत के। बादशाह ने कहा ऐसा करो पहले वजीर को भेजो, तुम जाओ जाकर देखो बाकी है भी कोई या ऐसे बन के बैठा हुआ। वजीर ने कहा ठीक है, वजीर गया, वहां ऐलान हो गया वजीर आजम आ रहे हैं, इंतजाम हुआ, ये हुआ वह हुआ सब कुछ। कहां आए इनका हजरत हुजरे में, एक झोपड़ी से बना रखी थी, गए ये जाके हाथ बांध के खड़ा हो गया, वो नीचे निगाह से तस्बीह में पड़ रहा है, उन्होंने इधर उठा के भी नहीं देखा, काफी देर खड़ा रहा। इन्होंने इसने सलाम किया, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं की। काफी देर खड़ा रहा, नजर उठा के नहीं देखा। इसके दिल पे बड़ा असर हुआ, वाकई ये तो अल्लाह का वली है, इसको पता है कि वजीर आजम आ गया मिलने के लिए और ये नजर उठा के नहीं देख रहा। उल्टे कदम वापस आ गए। बादशाह ने कहा क्या हुआ हुजूर, वाकई वो तो कोई अल्लाह का वली है, कैसे मैं गया, इतनी उधम मची, वजीर आजम आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको पता तो चला होगा ना कि मैं आ रहा हूं, उसने नजर उठा के नहीं देखा, वो तो आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहा था, मैंने सलाम किया उसने बस जवाब दिया और कोई बात नहीं की, वाकई अल्लाह का वली है। बादशाह ने कहा चलो ठीक है अब हम जाते हैं। फिर वहां पर उधम मची के बादशाह औरंगजेब आलमगीर आ रहा है इनसे मिलने के लिए, बुजुर्ग की जियारत के लिए, पहरे लगे, सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ, सब कुछ हुआ। बादशाह ने दूर अपनी जूतियां उतारी, नंगे पैर वहां से चला और चल चल के वहां तक पहुंचा, जाके बाद अब खड़ा हुआ, कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फिर नीचे निगाह से देखा ही नहीं बादशाह की तरफ पलट, वो बेचारा हाथ बांध के खड़ा रहा, औरंगजेब आलमगीर खड़ा रहा, वो आंखें बंद की अपने पढ़ने में। इसके दिल पे भी असर हुआ, वाकई ये तो कमाल आदमी, ना कुछ बोलता है, ना कुछ मांगता है, ना कुछ कहता है, ये तो लगा हुआ अपनी इबादत में, वाकई अल्लाह का वली है। बादशाह ने इजाजत चाही, उन्होंने इशारा कर दिया जाओ। इसने कहा अच्छा, वो जब चलने लगा तो इसने सोचा कदम बोसी कर लू, अल्लाह का वली है कदम बोसी कर लू। जैसे कदम बोसी के लिए झुका वो एकदम खड़ा हो गया, बादशाह सलामत ऐसा मत कीजिए। उसने कहा है का मैं वही बैरूपिया हूं, मैं वही बैरूपिया हूं जिसको आपने दो दफा पहचान लिया था। अब बादशाह ने कहा वाकई तू तो शर जीत गया, मैं हार गया, मैंने कहा था ना मैं पहचान लूंगा, मैं नहीं पहचान सकता। उसने कहा मैंने कहा था मैं ऐसा रूप दहारूंगा कि आप मुझे पहचान ही नहीं सकेंगे। हाँ वाकई सही बात, मैं बिल्कुल नहीं पहचाना, मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ, पता नहीं कौन अल्लाह का वली मौजूद, मैं तो कदम बोसी कराऊंगा। नहीं हुजूर मैं तो गुनाहगार आदमी, आप कहां मेरे कदम बोसी, मैं कोई वली थोड़ी हूं, मैं तो ऐसे ही रूप धारण के बैठे था यहाँ पर, और इसीलिए मुझे पता था आप जरूर आएंगे। जब शोहरत होगी, बात दूर तक जाएगी, तो आप जरूर आएंगे जियारत के लिए। अब मैं जीत गया नहीं जीत गया? हाँ, वाकई जीत गए। बादशाह ने कहा, अब मैं अपने वादे पर कायम हूं। मैंने कहा था अगर मैं हार गया और तूने जो रूप दहारा मैं नहीं पहचान सका, तो जो इनाम कहेगा मैं दूंगा। बस अब मैं खुश हूं, मैं हार गया लेकिन मैं खुश हूं, मैं वादा निभाऊंगा। अब जो तू कहे मैं तुझे देने के लिए तैयार। लेकिन उस बहरूपिये ने जो कहा, ये इस वाक्य का हासिल है, ये इस वाक्य का नतीजा है, और इस वाक्य का जो समरा है उसको याद रखने के काबिल। जब बादशाह ने कहा ना मैं हार गया और तू जो भी इनाम चाहे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, वजीर आजम कहे तो बना दू, मालो दौलत दे दू, ओहदा मनसब दे दू, मेरा वादा है, मैं नहीं पहचान सका बाकी तुझे, मैं तो समझा कोई वली बैठा हुआ, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ, ऐसा रूप तूने दहा। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए और उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं बहरूपिया हूं, मैंने बहुत से रूप दहारे, बहुत से लोगों को धोखा दिया, खुद आपको भी धोखा दिया, आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन जब से मैंने अल्लाह वालों का रूप दहारा है, अब मेरी कैफियत ही बदल गई। अब मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे ओहदा मनसब नहीं चाहिए, मैंने जो ये रूप दहारा है अब ये आखिरी है, इसके बाद कोई रूप नहीं दहारूंगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि अभी मैंने अल्लाह वालों का सिर्फ लिबास पहना है, सिर्फ उनका रूप दहारा है, तो शहंशाह औरंगजेब मेरे दर पर आ गया, जब मैं हकीकत में वैसा हो जाऊंगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने खाली रूप दहारा है, मैं वली नहीं हूं, तो बादशाह मेरे दर पे खड़ा है, और जब मैं हकीकत में वैसा होऊंगा तब क्या होगा। ये कहा और रोता हुआ वहां से निकल गया, और हकीकत में वो आखिर में अल्लाह का वली बना। पता ये चला कि अगर हम इन अल्लाह वालों का रूप दहार ले तो उसमें भी हमारी इज्जत। गौर करो, उनके लिबास की ये बरकत है, उनकी अदाओं को अपनाने की ये बरकत है कि अगर इंसान अल्लाह वालों की अदाओं को अपना ले, उनके लिबास को अपना ले, तो दुनिया वाले उसके सामने झुक जाए, और अगर हकीकत में हो जाए तो फिर बात ही क्या है। ये है सोहबत का असर कि इंसान नेक लोगों की सोहबत में जब बैठता है, उनकी अदाओं को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी गुफ्तार को, उनकी नसीहतों को, इन तमाम चीजों को अपनाता है, इस दुनिया में भी सर बुलंद रहता है और आखिरत में भी सर बुलंद। ये है सोहबत का असर। न कॉलेज से न स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। एक नजर डाल दी, दीन पैदा होगा। तो सोहबत का असर ये है, और दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे जद्दे अमजद और दादा हुजूर क़िबला क़ुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ अशरफी अल-जिलानी नब्बर अल्लाह मरकदो, 12 साल कश्मीर की पहाड़ियों में चिल्ला कशी की, और उस दौरान कंबल का लिबास इस्तेमाल किया, कंबल का कुर्ता, कंबल का पजामा। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, कैसा मौसम हो, वही लिबास। पहाड़ों में, गारों में चिल्ला कशी की, और जब वो चिल्ला मुकम्मल हुआ और गार से बाहर तशरीफ लाए, तो 10-12 चीले आई और उन्हें आके आपके सर पे ऐसे साया कर दिया। जब धूप में निकलते थे तो चीले आकर साया करती थी कि धूप में न चले। आपने फरमाया, नहीं, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, अब मैं जब शहर में चलूंगा ये चीले आकर फिर साया करेंगी, मरकूजे नजर बनूंगा, लोग देखेंगे ये क्या है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह से जिन्होंने चिल्ला कशी कराई थी, उनसे अटका, हुजूर ये मैं नहीं चाहता, मुझे तबलीग करनी है, लोगों में जाना है, वाजो नसीहत करनी है, और ये चीज मेरे साथ रहेगी तो मैं कैसे तबलीग कर सकूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, एक चीज बताइए, पढ़ो और आसमान की तरफ इशारा कर दो। उन्होंने पढ़ के इशारा किया, वो चीले गायब हो गए। आज का कोई होता सूफी तो बड़ा खुश होता कि ये तो मेरी करामत है, मैं जहां भी जाऊं मेरे ऊपर चीले साया कर रहे, जान जान के धूप में निकलता, लोग देखें मुझे, मुझे अल्लाह का वली माने। लेकिन जो असल वली है वो अपनी विलायत को छुपाता है, अपनी करामात को छुपाता है, जाहिर नहीं करता, कभी जाहिर हो जाए तो हो जाए, वरना कभी नहीं। यही तो वली की शान है। वली कभी नहीं कहता मैं वली हूँ। नबी को ये कहने का हक है कि मैं नबी हूँ। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि वो कहे मैं नबी हूँ मुझे मानो। वली कभी नहीं कहता मैं वली हूँ मुझे मानो। किसी वली ने आज तक कहा नहीं। अपने आप को छुपाते रहे, खुदा उनको जाहिर करता रहा। वो छुपाते रहे, वो जाहिर करता रहा। वो झुकते रहे, वो बुलंद करता रहा। अब क्या हुआ, जब वो चिल्ला पूरा हुआ और घर से बाहर तशरीफ ले आए तो एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत मियां अब्दुल समद फखरी निजामी रहमतुल्लाह ताला। दिल्ली में उनका बाजार है। उनसे भी दादा हुजूर क़िबला ने फैज हासिल किया। तो उन्होंने नीले रंग का तहमत और चिकन का कुर्ता ये सिलवा के उनको दिया कि अब ये लिबास पहने, अब ये कंबल का लिबास उतार दो। तो उन्होंने वो नीला तहमत बांध लिया और वो चिकन का कुर्ता पहन लिया दादा हुजूर क़िबला ने। और वो जो कंबल का कुर्ता था और पैजामा, उसको जाकर दरिया में डाल दिया। कहा इसको दरिया में बहा दो, बस इसका काम खत्म हो चुका, नफ्स खुशी हो गई, चिल्ला कशी हो गई, तुम्हें मकामात मिल गए, अब ये लिबास पहन। कहने का मकसद ये है कि पीर का लिबास, सारी जिंदगी उन्होंने यही नीला तहमद और चिकन का कुर्ता पहना। और अब्दुल क़िबला फरमाते हैं कि हमने उनसे अर्ज किया कि हुजूर हमें भी दे दे, मैं भी पहनना चाहता हूं। फरमाया पहनोगे? हाँ। ऐसे तो नहीं कि फिर बाद में उतार दो? नहीं, मैं पहनूंगा। तो फरमाते जब मैंने पहना और उनको दिखाया कि मैंने ये नीला तहबंद बांधा है, तो फरमाया बेटा अब ये तख्ते पे उतरना चाहिए। मरने के बाद आदमी को लिटाते ना तख्ते पर। कहने का मकसद ये था कि जिंदगी में ना उतरे, कोई और लिबास मत पहनना, यही लिबास पहनना। इन्होंने भी अहद कर लिया, मैं भी पक्का हूं इंशाल्लाह तख्ते पर ही उतरे। और हमने देखा कि कहां कहां वो तशरीफ ले गए, हॉलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कहां कहां चले गए। वही नीला तहमन, वही कुर्ता, वही लिबास इस्तेमाल किया। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसे भी मौसम हो, वही लिबास इस्तेमाल। पीर का लिबास, फनाफी शेख, अपने आप को पीर की जात में फना कर, पीर का लिबास ऐसा पहना कि फिर वो उतारा नहीं, वही लिबास सारी जिंदगी इस्तेमाल करते रहे। जब फनाफी शेख बने, उनकी अदाओं को अपनाया, उनके लिबास को अपनाया, उन्होंने उसका नतीजा ये दिया कि अपने पास ही बुला लिया। आज उनके पास ही आराम फरमाए, कयामत में उनके साथ ही उठे। ये है पीर की अदाओं का, पीर के लिबास को इस्तेमाल करने का समरा और नतीजा। कहने का मकसद ये है कि हम इस चीज को अहमियत नहीं देते, हमने बहुतों का इल्म भी नहीं, हालांकि इसका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। बुजुर्गान दीन के इस्तेमाल करदा अशिया और खास तौर पे अपने पीर के इस्तेमाल करदा अशिया, आदमी उसका अदब करे, एहतराम करे, उससे भी फैज मिलता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही अपनी खानकाह में बैठे हैं, कव्वाली हो रही, महफिल समा हो रही, इत्तेफाक से हजरत के पास पैसे नहीं। जब कव्वाली खत्म हुई, अब कव्वाल को कोई देना है, क्या दे? फरमाए ये हमारी जूतियां उठा के ले जाओ। वो लेके चला। अब आज के कव्वाल को दे दे तो वो कहेंगे यार जूतियों का मैं क्या करूं, कोई और चीज दे दे, कम से कम अपने पहने भी जूती उठाकर दे दी। लेकिन खैर वो कव्वाल ने कुछ नहीं कहा, वो जूतियां लेके चला गया। क्या हजरत ने अता की है, इस्तेमाल करता उनकी। अब ये यहां से चला, उधर से उनके मुरीद सादिक, सच्चे मुरीद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वापिस आ रहे। और वो कहां गए थे? वो बादशाह के दरबार में गए थे, वहां से उनको इनाम मिला था, बहुत से माल दौलत वो लेकर वहां से आ रहे हैं। ये कव्वाल इधर से जा रहे हैं खानकाह से, और इसके पास हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जूतियां नालैन। जब उन्होंने देखा, पीर की खुशबू आ गई। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर पीर की कोई चीज किसी के पास है तो आपको खुशबू आ जाए। और ये मोहब्बत की बात, मोहब्बत होगी तभी खुशबू आएगी, नहीं होगी तो नहीं। इसलिए कि कल भी लगाओ है तब खुशबू है, मोहब्बत है तो है। इन्होंने पूछा कहां से आ रहे हो, कहा महबूब इलाही की बारगाह से आ रहा हूं। ये वहीं रुक गए। कैसे गए थे, महफिल करने? हाँ महफिल करने गया था, लेकिन उन्होंने तो अपनी जूतियां उठा के दे दी, पैसे तो दिए नहीं, उनके पास थे नहीं, उन्होंने कहा ये जूतियां ले, महबूब इलाही की जूतियां नानैन तुम लेकर आ रहे हो, कहां मुझे दिए उन्होंने। अमीर खुसरो के ऊपर एक कैफियत तारी हो गई, मेरे पीर की जूतियां कितने में मुझे दोगे बताओ, कितने में सौदा कर रहे हो। वो कव्वाल हैरान होकर देख रहा है ये जूतियों का सौदा कर रहा है, और वो भी पुरानी जूतियां, हजरत की कोई नई जूती मिली, पुरानी जूतियों का सौदा। उसको क्या पता कि इश्क और मोहब्बत क्या चीज है, वो क्या जानता है कि अमीर खुसरो तो महबूब इलाही की मोहब्बत में फना है, डूबे हुए सच्चे मुरीद हैं। जितना माल था सब कव्वाल को दे दिया, सिर्फ अपने पीर की जूतियां वापस ले ली। जो बादशाह की तरफ से इनाम मिला था, हीरे जवाहरात या शर्फियां जो भी मिला था, सब कव्वाल को दे दिए, सब ले ले, पीर की जूतियां मुझे दे दी। और वो ले ली और अपने सर पे रखी और उसके चारों तरफ पगड़ी बांध ली, और वहां से झूमते हुए रख करते हुए खानकाह में आ गए। उधर महबूब इलाही बैठे हैं, वहीं से पता चल गया, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे खुसरो क्या हुआ, बहुत सस्ता सौदा किया तुमने, यानी जूतियां इतनी सस्ती नहीं थी, ये जो माल और दौलत दिया है ये भी कम है, इसकी कीमत तो और भी ज्यादा है, सर पे रख कर रहे हैं, मुझे अपने पीर की जूतियां मिली है, मैं सर पे रख के अपने आप को मैं क्या समझ रहा हूं कि मैं दुनिया का सुल्तान हूं। ये सब मोहब्बत और अकीदत की बात है। तो पता ये चला कि बुजुर्गान दीन की इस्तेमाल करता अशिया, उनका अदब एहतराम जब इंसान करता है उसी से उनको फैज हासिल होता है, बरकतें हासिल होती हैं, फीज़ो बरकात हासिल होते हैं, और ये तमाम चीजें सोहबत से हासिल होती हैं। आदमी कितना ही आलिम फाजिल मुफक्किर बन जाए, वेल एजुकेटेड हो जाए, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत नहीं है तो कुछ नहीं है। और एक जाहिल आदमी है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर रहा है, वो कमाल हासिल कर लेगा कि वो एक आलिम भी नहीं कर सकता। यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अलसत साल ताद बेरे, दुनियादार की सोहबत में 100 साल गुजार दो और अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा गुजार दो, वो एक लम्हा 100 साल से बेहतर। उसे एक लम्हे में तुम्हें जो कुछ मिल जाएगा वो 100 साल किसी दुनियादार के पास बैठने से हरगिज नहीं मिल सकता। नेकों की सोहबत इंसान को नेक बनाती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। तो आज की इस नशिस्त का हासिल यही है कि आप अपने आप को बुरी सोहबत से बचाएं, बुरी जगह गलत जगह जाने से बचाएं, गलत लोगों से बचाएं, गलत लोगों की सोहबत में बैठने से बचाएं। ये मत सोचें कि हम तो खाली बैठे कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ बैठेंगे और गलत बातें कान में पहुंचेंगी, आपका जहन खराब हो जाएगा, और नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे अच्छी बातें पहुंचेंगी, जहन पाकीदा हो जाएगा, कल्ब पाक हो जाएगा, आमाल व अफाल व किरदार सब पाकीदा हो जाएगा। अहले तरीकत और अहले मोहब्बत का तरीका यही है कि वो हमेशा खानकाह में हाजिरी को अपना अव्वलीन मकसद समझते हैं। इसीलिए हमने यहां पर मुरीदीन की तरबियत के लिए तो ये नशिस्त है ही, इसके अलावा भी जुमेरात को जिक्र हल्का है, जुमे को खत्म खाजगान है, 17-27 को महफिल है, 13 तारीख को, और आज भी 13 तारीख है, अभी मैं महफिल नात भी होगी इंशाल्लाह मगरिब के बाद जो इशा तक चलेगी, और नौचंदी जुमेरात है, फिर मुख्तलिफ रातें हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि सब इस सोहबत में बैठें, फ्यूज व बरकत हासिल करें, और इज्तमाई इबादत का जो फैज है वो सबको हासिल। आप घर में बैठकर वो इबादत नहीं कर सकते जो यहां आकर करें, और जिस मकाम पर इबादत होती है वहां इंसान को कल्बी सुकून मिलता है, और इस बात की गवाही आप खुद भी दे सकते हो। कितने लोग हैं जो आकर ये कहते हैं कि जब हम दरगाह में दाखिल होते हैं सुकून हो जाता है, क्यों? जहां इबादत होती है वहीं रहमतों का नुजूल होता है, और इस मकाम पर इस दरगाह को बने हुए 52 साल हो चुके हैं, 52 साल से जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, रूहानी तौर पर बुजुर्गान दीन की हाजिरी हो रही है, वहां सुकून ना हो तो और कहां हो। इसलिए इन तमाम महाफिल में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। जितनी ज्यादा महाफिल में हाजिरी होंगी उतनी ज्यादा फैज़ व बरकात हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए और उनके फैज़ व बरकात से मुस्तफीद फरमाए। आइए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बयान किए से अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफैल से माफ़ करना। ऐ रब्बुल आलमीन हमें बुरे लोगों की सोहबत से बचा, हमें नेकों की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमा, हमें इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के नालायन पाक से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करना। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु यसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।